ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला अध्याय 11, श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाएं और श्लोक क्रमांक 52। तेह प्रेमाधीन तोमर प्रेम गाढ़तर अवश्य करीबेन कृपा तुमार ऊपर। तेह प्रेमाधीन तोमर प्रेम गाढ़तर अवश्य करीबेन कृपा तुमार ऊपर। तेह प्रेमाधीन तोमार प्रेम गाढ़तर अवश्य करीबेन कृपा तुमार ऊपर। शब्दार्थ तेह वे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम अधीन प्रेम के अधीन तोमार प्रेम आपका प्रेम गाढ़ तरह बहुत गहन अवश्य अवश्य करीबेन कृपा वे कृपा करेंगे तोमार ऊपर आपके ऊपर। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जब भट्टाचार्य ने राजा के दृढ़ संकल्प को जान लिया तो उन्होंने घोषित किया केवल शुद्ध प्रेम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आपका प्रेम अत्यंत गहरा है अतएव वे आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। तात्पर्य ऐसा संकल्प पहली योग्यता है। इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में की है उत्साह निश्चया धैर्यात। मनुष्य में प्रथम तो दृढ़ संकल्प दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मनुष्य को भक्ति में लगने पर यह दृढ़ संकल्प बनाए रखना चाहिए तभी कृष्ण उसकी सेवा से प्रसन्न होंगे। गुरु तो भक्ति का मार्ग दिखला सकता है यदि शिष्य इन सिद्धांतों का पालन बिना विचलित हुए दृढ़ता पूर्वक करता है तो उसे कृष्ण कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसकी पुष्टि शास्त्रों से होती है। तो सबसे पहले मैं रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और यहाँ के सभी भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे कुछ सेवा करने का अवसर प्रदान किया है और इस श्लोक पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद कृष्ण बुक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस वाक्य बताते हैं द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद कौन व्यक्ति महान है इसका परिभाषा दे रहे हैं। तो अलग अलग लोग कह सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति महान है। कोई कह सकता है कि कोई पॉलिटिशियन बहुत महान है, कोई कह सकता है कोई वैज्ञानिक महान है या कोई बिजनेसमैन महान है। ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग परिभाषा हो सकता है कि कौन व्यक्ति महान है। लेकिन यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों को प्रोवोकिंग को क्या कहते हैं जिससे व्यक्ति उत्तेजित होता है ऐसे परिस्थितियों को कैसे वो सामना करता है इससे पता चलता है कि क्या व्यक्ति महान है या नहीं। तो यहां पर इस लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र की परीक्षा ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार महाराज प्रताप रुद्र बहुत विनंती करते हैं सारम भट्टाचार्य से, अन्य भक्तों से, और सभी भक्तगण मिलकर महाप्रभु को विनंती करते हैं, कृपया करके इस राजा से मिलो, ये साधारण राजा नहीं है, ये महान भक्त है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने दृढ़ संकल्प लिया था कि हालांकि ये व्यक्ति भक्त हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो राजा है, राजा का टाइटल है, और मैं एक सन्यासी हूं, इसलिए मैं नहीं मिल सकता हूं। तो महाराज प्रताप रुद्र कहते हैं कि ठीक है, अगर भगवान का यह संकल्प है तो मैं भी संकल्प लेता हूं। और पिछले श्लोकों में हम देखते हैं कि किस प्रकार महाराज प्रताप रुद्र संकल्प लेते हैं और कहते हैं, यदि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो मेरा शरीर तथा मेरा राज्य निश्चित रूप से व्यर्थ हैं। किबा राज्य किबा देह सब आकार। तो हम देखते हैं महाराज प्रताप रुद्र वो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया था, और उनका कहना है कि अगर महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी तो फिर यह जीवन यह राज्य सब बेकार है, कुछ मतलब नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, ठीक है भगवान नहीं मिलना चाहते तो क्या फर्क पड़ेगा, मैंने तो बहुत प्रयास किया, छोड़ो, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। तो कई तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी इस बात को दोहराते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए डिटर्मिनेशन या दृढ़ता की आवश्यकता है। इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा संकल्प पहली योग्यता है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन। यह दृढ़ता जो है यह पहली योग्यता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर यह दृढ़ता नहीं है तो फिर हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी कामनाएं हो सकती हैं, बहुत सारे प्रलोभन हो सकते हैं, जिसके वजह से हम भक्ति में ठीक से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन दृढ़ता या विश्वास का मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को प्राप्त करने का जो प्रयास है वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है एक जन्म लगे, हो सकता है कहीं जन्म लगे, लेकिन फिर भी मैं वो प्रयास नहीं छोड़ूंगा। शास्त्र में कई बार ये उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार चातक पक्षी, तो अभी बारिश का मौसम है तो बताया जाता है कि चातक पक्षी केवल जो बादल से जो शुद्ध पानी है केवल उस पानी को ग्रहण करता है, और गर्मी के दिनों में उस समय तो वर्षा का पानी नहीं होता, लेकिन फिर भी चातक पक्षी कहीं और से एक बूंद पानी भी नहीं पीता है। हालांकि हो सकता है कि कई जगह पर पानी हो, लेकिन फिर भी यह चातक पक्षी केवल राह देखता है कि कब वो शुद्ध पानी प्राप्त होगा। इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प। और कभी कभी प्यास के वजह से यह पक्षी मर जाता है, लेकिन फिर भी अपने दृढ़ संकल्प को वो खो नहीं बैठता है। और कभी कभी जब वो इस शुद्ध पानी के लिए राह देखता है, तभी गर्जना, बिजली सबका सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी यह चातक पक्षी उस दृढ़ संकल्प को कभी छोड़ता नहीं। दिस इज डिटर्मिनेशन। यहां पर सारंग भट्टाचार्य कह रहे हैं, केवल शुद्ध प्रेम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो सारंग भट्टाचार्य कह रहे हैं कि यह प्रेम का लक्षण है, उत्साह का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मुझे बहुत प्रेम है। अक्सर भारत में कई लोग कहते हैं कि मेरे हृदय में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, क्या जानते हो आप। ठीक है, एक माला जप करो। नहीं, वो दिल में चलता रहता है। तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है, बोलना आसान है, लेकिन वो प्रेम क्या, वो सही प्रेम है या नहीं, या कितना प्रेम है, उसका परीक्षा जरूर लिया जाएगा। और कोई बच नहीं सकता है। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कितने सारे भक्तों का उदाहरण है, और हर एक भक्त के जीवन में हम देखते हैं कि भगवान ने उस भक्त के जीवन में कड़ी परीक्षा ली। क्योंकि जब परीक्षा लिया जाता है तब पता चलता है कि कौन कितना पानी में है। और भक्ति में जीवन में इस परीक्षा से कोई बच नहीं सकता है। उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार सोना है, जब सोने को अग्नि में डाला जाता है तब पता चलता है कि कितना शुद्ध है वो। तो उसी प्रकार क्या हमने भक्ति में कितनी प्रगति की है, उसके लिए भगवान परीक्षा लेते हैं, और कोई बच नहीं सकता है उस परीक्षा से। हो सकता है कि हम भक्ति वैभव की परीक्षा से हम बच सके, लेकिन भगवान की जो परीक्षा है, इस परीक्षा से कोई बच नहीं सकता है। और भगवान श्रीमद् भागवतम में बार बार इस सिद्धांत को स्थापित करते हैं। पांडव हो या परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, रांतिदेव, और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो गोपियां हैं, सबके जीवन में हम देखते हैं। और जब वास्तव में प्रेम होता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रेम का परिभाषा देते हैं कि प्रेम का परिभाषा, प्रेम का मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे बहुत परिस्थितियां आ जाएं जिसके वजह से प्रेम टूटने की संभावना हो, there are many reasons, many possibilities for the love to be broken, but in spite of that it does not break. That is the definition of love. बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिससे संभावना है कि व्यक्ति उस प्रेम के वस्तु या उस प्रेम को छोड़ दें, लेकिन हर कारण के बावजूद भी जब व्यक्ति नहीं छोड़ता, प्रेम करना नहीं छोड़ता है, तो फिर कहा जाता है कि यस दिस इज रियल लव, ये सच्चा प्रेम है। तो फिर प्रश्न यह उठ सकता है, ठीक है, उसके पहले यहां पर श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी का उपदेशामृत से यह श्लोक कोट कर रहे हैं, उत्साह निश्चय धैर्यात। तो उस श्लोक के तात्पर्य में उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद उत्साह का परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि एंडेवर एग्जीक्यूटेड विथ इंटेलिजेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड उत्साह और एंथुजियाज्म। अपने बुद्धि को बुद्धि के साथ जब हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इसको उत्साह कहा गया है, पूरी तरह से प्रयास करना। लेकिन ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से किसी भी तरह, नहीं, अपने बुद्धि के साथ। ये भौतिक बुद्धि नहीं है, ये आध्यात्मिक बुद्धि है जो हम गुरु और शास्त्र से प्राप्त करते हैं। इस बुद्धि को लगाते हुए, उपयोग करते हुए, जब हम भक्ति में अग्रसर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं, इसको उत्साह कहा गया है। और श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यह उत्साह की क्या जरूरत है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उत्साह की जरूरत है, प्रयास की जरूरत है, क्योंकि उत्साह के बिना किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर कोई बिजनेस में सफल होना चाहता है तो जरूर उत्साह की जरूरत है। अगर वो पूरी तरह से प्रयास नहीं करेगा तो कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। या किसी स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है एग्जाम में तो उत्साह की जरूरत है। जय श्री राधा राधा कृष्ण जी की, जय श्री कृष्ण बलराम की। तो हर एक क्षेत्र में उत्साह की जरूरत है। उसी प्रकार अगर भक्ति के क्षेत्र में भी अगर हम सफल होना चाहते हैं, अभी अगला प्रश्न यह उठता है कि सफलता की परिभाषा क्या है। तो ऑफ कोर्स भौतिक लोगों के पास तो बहुत सारी परिभाषा है सफलता क्या है, और हो सकता है कि भक्तों के समूह में भी अलग अलग भक्तों की अलग अलग परिभाषा हो सकता है कि सफलता क्या है। कोई सोच सकता है कि सफलता प्राप्त करने का मतलब है बहुत सारे किताब वितरण करना, कोई सोच सकता है सफलता का मतलब है बहुत सारे प्रीचिंग प्रोग्राम्स होना, कोई सोच सकता है सफलता का मतलब है कि बहुत सारे जो अर्चविग्रह की सेवा है बहुत अच्छी तरह से करना, ये सब जरूर सफलता है। हम ये नहीं कह रहे ये सफलता नहीं है, ये जरूर सफलता है, लेकिन उसके पीछे भावना क्या है, उसके पीछे हेतु क्या है, ये महत्वपूर्ण है। दिस इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। चेतना क्या है उसके पीछे, हम ये सब कार्य कर रहे हैं किसके लिए, किस हेतु के साथ, यह महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द अंडरलाइंग मोटिव। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो जब हम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं बिना कुछ रुकावट का, तो हर परिस्थिति में, या तो वो बहुत आसान हो, मुश्किल हो, तदाकदित यश मिले न मिले, कोई लोग गुणगान करे न करे, हर परिस्थिति में जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारी जो निर्धारित सेवा है वो करते रहने के लिए जब हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे तभी वो उत्साह कहां गया है। तो श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये उत्साह की जरूरत क्यों है भक्तिमय जीवन में, क्योंकि हमें एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुआ है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अनेक ब्रह्मांडों में अनेक शरीरों में घूमने के बाद हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, और इस मनुष्य देह में हमें गुरु का शरण प्राप्त हुआ है, कृष्ण का शरण प्राप्त हुआ है, तो ये बहुत ही दुर्लभ है। और विशेषकर इस भूमंडल में, और केवल भूमंडल में ही नहीं इस भारतवर्ष में, ये तो और भी दुर्लभ है। तो अगर किसी व्यक्ति को एक बहुत ही दुर्लभ मनी प्राप्त हो जाए और फिर वो खो देता है क्योंकि उसको पता नहीं कि इसका मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जो भाग्यवान जीव होता है, जो अति भाग्यशाली व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति को गुरु और कृष्ण का शरण प्राप्त होता है। और उतना ही नहीं, इस कलयुग में ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और इस कलयुग में हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कलयुग में जन्म लेने के जो देवतागण है वो भी आतुर हैं। इस भारतवर्ष में, इस कलयुग में जन्म लेने के लिए जो देवतागण है वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हम इतना भाग्यवान हैं कि हमें जन्म मिला है, एक मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बार बार इस बात को दोहराते हैं कि डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, ये अवसर को खोना मत दें। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं कि क्योंकि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है इस मनुष्य देह को सिद्ध करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हर एक क्षण का सदुपयोग करो, क्योंकि हर एक क्षण जो है मूल्यवान है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे पास और कितने क्षण बाकी हैं। और श्रील प्रभुपाद जी अक्सर चाणक्य पंडित को कोट करते हैं कि एक क्षण को अगर हम खो देंगे तो कई करोड़ों डॉलर देकर भी हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। तो क्योंकि हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है तो इसलिए इसका सदुपयोग करना जरूरी है। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमें उत्साह से जब हम भक्ति करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और ये जो भक्ति, भक्ति का बीज जो प्राप्त हुआ है, जिसको ये बहुत मूल्यवान है, जिसको हमें गुरु से प्राप्त हुआ है, तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब कोई मनुष्य को भक्ति में लगने पर वह दृढ़ संकल्प बनाए रखना चाहिए, तभी कृष्ण उसकी सेवा से प्रसन्न होंगे। तो इस दृढ़ता से भगवान प्रसन्न होंगे। आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, गुरु तो भक्ति का मार्ग दिखला सकता है। यदि शिष्य इन सिद्धांतों का पालन बिना विचलित हुए दृढ़ता पूर्वक करता है तो उसे कृष्ण कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो जो गुरु होते हैं वो मार्ग दिखा सकते हैं। गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, निर्देशन देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ बताते हैं, लेकिन उसका पालन जो है हमें ही करना है। ऐसा नहीं कि गुरु हमारे लिए जप करेंगे, ऐसा नहीं कि गुरु हमारे लिए नियम पालन करेंगे। जो हरि नाम का जप करना, नियमों का पालन करना, वो तो हमें ही करना है। दूसरा कोई भी व्यक्ति हमारे लिए नहीं कर सकता है, वो हमें ही करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी दीक्षा देते समय एक लेक्चर में इस बात को दो बार दोहराते हैं और कहते हैं कि अगर आप लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मैं सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता हूं। दो बार प्रभुपाद जी इस बात को दोहराते हैं और श्री प्रभुपाद जी इस बात को कई बार दोहराते हैं। एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। तो जो विमान है, जब धरती पर होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं पायलट को मदद करने के लिए, प्लेन ठीक ठाक है या नहीं देखने के लिए बहुत लोग होते हैं मदद करने के लिए। लेकिन एक बार ऊपर चला गया तो फिर अगर कुछ तकलीफ है तो जो पायलट है उसको मैनेज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हो सकता है वो किसी से कुछ सलाह ले सकता है, लेकिन मैनेज तो उसको ही करना पड़ेगा और तब और कोई नहीं होगा उसको मदद करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी यह उदाहरण को भी कई बार अपने लेक्चर्स में बताते हैं। तो उसी प्रकार इस भक्ति लता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे भक्तगण हमें मदद कर सकते हैं। तो इसलिए भक्तों की समूह में रहना और भक्तों का संघ का लाभ उठाना यह बहुत जरूरी है ताकि हमें वो उत्साह मिले, वो प्रेरणा मिले। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि इस भौतिक जगत में भी लोग अपना अपना समूह बनाते हैं, सोसाइटीज बनाते हैं। इंजीनियर लोग अपना सोसाइटी बनाते हैं, डॉक्टर्स सोसाइटी बनाते हैं, सब लोग अपना अपना सोसाइटी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य लोगों से प्रेरणा प्राप्त हो जाए उसके लिए वो समूह सोसाइटी। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने ये सोसाइटी बनाया ताकि हम एक दूसरों को मदद कर सकें, एक दूसरों से प्रेरणा ले सकें। लेकिन जब हम अन्य भक्तों को देखते हैं कि वो बहुत उत्साह से भक्ति कर रहे हैं लेकिन उस उदाहरण को लेकर और खुद को उत्साह से भक्ति करना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो हम कह सकते हैं ठीक है वो भक्त तो बहुत उत्साह से भक्ति कर रहा है लेकिन मैं वो नहीं कर सकता हूं। आई एम सो फॉलन आई कांट टेक एडवांटेज ऑफ द एसोसिएशन। मैं इतना पतित हूं क्या करे। कोई इस प्रकार का बहाना बना सकता है। एक बार गुरु कृपा स्वामी यह दृष्टांत बताते हैं। तो उस समय गुरु कृपा महाराज, जैसे कि आपने देखा होगा वृंदावन मंदिर में उनका नाम है, तो उन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन दिया था कृष्ण बलराम मंदिर बनाने के लिए, बहुत फंड कलेक्शन कर रहे थे जापान में। तो एक दिन सुबह के समय कुछ 12:30 श्रील प्रभुपाद जी अपने सेक्रेटरी ब्रह्मानंद प्रभु को बोलते हैं कि जाओ गुरु कृपा को बुलाओ। तो ब्रह्मानंद प्रभु जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो गुरु कृपा महाराज उठते हैं, नींद में थे, उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं, ब्रह्मानंद प्रभु है। क्या हुआ? प्रभुपाद जी बुला रहे हैं। ये समय प्रभुपाद जी बुला रहे हैं, ठीक है। तो गुरु कृपा महाराज जाते हैं प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी पहला प्रश्न पूछते हैं, क्या कर रहे थे? इस समय मैं क्या करूंगा, सो रहा। प्रभुपाद जी क्यों सो रहे थे? गुरु कृपा प्रभुपाद जी मैं थका हुआ था तो इसलिए मैं सो रहा हूं। प्रभुपाद जी के लेकिन मैं नहीं सो रहा हूं, देखो मैं तो ट्रांसलेशन कर रहा हूं, मैं नहीं सो रहा हूं। गुरु कृपा महाराज कहते हैं प्रभुपाद आप कर सकते हैं, आप तो महात्मा हैं। प्रभुपाद जी कहते आप महात्मा क्यों नहीं बनते फिर? हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभुपाद जी किसी भी प्रकार का बहाना सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी गुरु कृपा महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद जी उनका थोड़ा जो घमंड है वो थोड़ा कम करना चाह रहे थे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति जो है अगर वो दृढ़ संकल्प है, अगर वो डिटर्मिनेशन है, तो हर एक व्यक्ति महात्मा बन सकता है। महात्मानस्तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्य अनन्य मनसो ज्ञात्मा भूतादिम अव्ययम। उस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति महात्मा बन सकता है अन्य महात्माओं की संगति से, कोई भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि केवल कुछ लोग ही महात्मा बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी बन सकता है अगर वो दृढ़ संकल्प हो तो बन सकता है, और अन्य महात्माओं की संगति से कोई भी बन सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारी वो इच्छा है या नहीं। सो मच इज बेस्ड ऑन डिजायर, इच्छा। क्योंकि अगर इच्छा है तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए। तो हम देखते हैं कि बाहर के लोग बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं पैसे कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो तीव्र इच्छा है, इंद्र तृप्ति करने की तीव्र इच्छा है, तो इसलिए प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार अगर भक्ति में आगे बढ़ने की वो तीव्र इच्छा है तो फिर हम भक्तों की संगति का लाभ उठाएंगे। जो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं भक्ति लता के लिए वो सुरक्षा है। द फेंसिंग ऑफ द भक्ति लता इज द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड फॉलोइंग ऑफ द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो भक्तों की संगति में जब हम उस संगति का मतलब यह नहीं है कि केवल हम भक्तों के साथ रह रहे हैं, वो तो हॉस्टल में लड़के लोग रहते हैं एक साथ, वो संगति नहीं है। संगति का मतलब यह है, एसोसिएशन का मतलब यह है कि हम उस संगति का लाभ उठाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम देखते हैं कि अन्य भक्त उत्साह से भक्ति कर रहे हैं तो फिर हम उस उनको देखकर प्रेरणा लेकर हम खुद के जीवन में उतारने का पूरी तरह से प्रयास करें। उसको कहते हैं संघ का लाभ उठाना। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने यह सोसाइटी इसलिए बनाया है ताकि हम भक्तों की संगति का लाभ उठाएं। We take advantage of the association of devotees. अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन चीजों को बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और कभी कभी हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि मैं ध्यान पूर्वक जप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जब तक हम निष्ठा के स्तर पर नहीं है, अनिश्चित भजन क्रिया का एक लक्षण है घनथरल, तो हमारा जो भक्ति का जो कर्व है कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलता रहता है। साधना भक्ति के स्तर पर ये स्वाभाविक है एक दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो भक्ति का जो ग्राफ है वो ऊपर जाए, हमेशा धीरे धीरे हो सके। तो अगर इस बात को हम केवल बुद्धि के स्तर पर समझेंगे तो फिर कई दिन तक इस उत्साह को बनाए रखना मुश्किल होगा। इफ यू ओनली अंडरस्टैंड दिस इंटेलेक्चुअली कि मुझे दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, अगर केवल बुद्धि के स्तर पर अगर हम इसको समझेंगे, फिर यह उत्साह जो है ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस ज्ञान के साथ विज्ञान की आवश्यकता है। There must be realization along with the theoretical knowledge। तो इसलिए उस साक्षात्कार, उस विज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि भगवान के प्रति, जैसे कि यहां पर सारंग भट्टाचार्य बता रहे हैं कि क्योंकि प्रेम है तो इसलिए महाराज प्रताप रुद्र ये दृढ़ता क्यों दिखा पा रहे हैं, क्योंकि प्रेम है। तो जिस हद तक हमने भगवान के प्रति प्रेम को विकसित किया है उस हद तक हम ये दृढ़ता के साथ भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि यहां पर श्याम भट्टाचार्य बता रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आपका प्रेम अत्यंत गहरा है। तो जो सारंग भट्टाचार्य हैं, जो वास्तव में महाराज प्रताप रुद्र के गुरु हैं, वो बता रहे हैं कि आपका प्रेम बहुत गहरा है। और इसका परिणाम क्या होगा, श्याम भट्टाचार्य बता रहे हैं, अतएव वे आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे, क्योंकि प्रेम गहरा है तो इसलिए अवश्य कृपा करेंगे। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रेम गहरा है या नहीं, वो कैसे जान पाए। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के दूसरे अध्याय श्लोक क्रमांक 59 परम दृष्टवा निवर्तते, इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं, व्हेन वन इज एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियस वन ऑटोमेटिकली लूजेस टेस्ट फॉर पेल डेड मटेरियल थिंग्स। श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण कॉन्शियस है, इसका मतलब यह है कि हर एक चीज जो है वो भगवान को केंद्र में रखते हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर एक कार्य करता है, इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। तब स्वाभाविक रूप से इस भौतिक जगत के जो जड़ वस्तु हैं इनके प्रति जो रुचि है अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये परीक्षा है, श्री प्रभुपाद जी बताते अपने तात्पर्य में कि कितना हद तक हमने इस भौतिक जगत के जड़ वस्तुओं से या भौतिक इंद्र तृप्ति से किस हद तक हमने रुचि समाप्त कर दिया है, ये परीक्षा है। वो स्थूल रूप में हो सकता है और सूक्ष्म रूप में भी हो सकता है। तो भक्ति में आने के बाद जो स्थूल ग्रास इंद्रतृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो तो हम छोड़ देते हैं धीरे धीरे, लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रतृप्ति है, सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भक्ति में आने के बाद भी, तो भक्ति का परिभाषा जो रूप गोस्वामी देते हैं और शिल प्रभा जी अक्सर कोट करते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो कर्म, जो कर्म का कलमश है शुद्ध भक्ति में, वो क्या है? जब हम हमेशा इसके बारे में सोचते हैं कि मैं ये सेवा कर रहा हूं लेकिन फल क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्रूट्स, तो जब हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं और भगवान की प्रसन्नता उसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं, तो ये कर्म का कलमश है हमारे भक्ति में। तो जब तक ये कलमश है, शुद्ध भक्ति नहीं है, तब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम कितना कृष्ण कॉन्शियस हैं, यह सोचें। क्या हम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं या नहीं? तो जब हम, when one is actually कृष्ण कॉन्शियस, तो सुबह से रात तक हम खुद के जीवन में हम देख सकते हैं कि क्या हम हर एक क्षण को, क्या हम कृष्ण कॉन्शियस भावना से बिता रहे हैं या हम किस रूप में बिता रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार हर क्षण क्षण हम देखते हैं कि क्या हम कृष्ण कॉन्शियस है या नहीं, तो फिर उसे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तब वास्तव में हम भगवान के सुंदर रूप से आकर्षित हो जाते हैं। और फिर भगवान की कृपा से, जब भगवान के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, तो फिर हमें लगता है, जैसे कि यहां पर महाराज प्रताप रुद्र बता रहे हैं, कि तभी यह मेरा जीवन, ये देह, ये राज्य, जो भी भौतिक चीज है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है फिर। तो फिर हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है कि किस प्रकार भगवान प्रसन्न हो जाए, किस प्रकार गुरु प्रसन्न हो जाए, किस प्रकार वैष्णव प्रसन्न हो जाए, ये एकमात्र लक्ष्य होता है हमारे जीवन का। तो फिर हम इस दृढ़ता के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ, हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो जब हम इच्छा करते हैं तीव्रता से कि मैं हर एक कार्य में केवल भगवान को प्रसन्न करने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा, जब हम यह इच्छा हम करेंगे और जब भगवान इस इच्छा को देखते हैं, तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामपियान्ति ते। तो जब भगवान ये इच्छा को देखते हैं, तो फिर भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान वो बुद्धि देते हैं दृढ़ता के साथ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तभी हमें ये जो ऊंचा स्वाद है, हायर टेस्ट, ये प्राप्त होगा और फिर हम दृढ़ता के साथ भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तभी, हालांकि इस भौतिक जगत में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे प्रलोभन आ सकते हैं माया देवी के द्वारा, लेकिन फिर भी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे गुरु और कृष्ण की कृपा से। लेकिन क्योंकि हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, तब भगवान प्रसन्न होकर हमें मदद करेंगे। योग क्षेमम वहाम्यहम्। तभी भगवान मदद करते हैं और फिर उनकी कृपा से ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और तभी हम उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ गुरु और कृष्ण की, उनके जो निर्देशन है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हम पालन कर पाएंगे और फिर जैसे कि यहां पर फिर हम इस दृढ़ता के साथ भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और फिर उस प्रेम के साथ हम भगवान को प्रसन्न करके उनकी कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसको कुछ प्रश्न है? हाँ जी,
एवरीबडी हैज टू फ्लाई इट्स ऑन प्लेन, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में समझे? अपने भक्ति जीवन में जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं या जो शास्त्रों में प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस हैं, सो उनको सुनने के बाद हमें अपना आध्यात्मिक जीवन उनको फॉलो करते हुए बिताना, इस तरह समझे?
तो इंस्ट्रक्शंस तो सबको मिलते हैं, तो प्रभुपाद जी ने अपने किताबों में सबके लिए इंस्ट्रक्शंस दिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सबको है, लेकिन पालन कौन करे? मुझे ही करना, कोई और नहीं कर सकता है ना मेरे लिए। तो मैं कितना ध्यान पूर्वक जप करूंगा वो मेरे ऊपर निर्भर है, कोई और नहीं कर सकता। या चार नियमों का पालन है या अन्य आदेश है गुरु का, वो पालन करना तो मुझे ही पड़े। तो एक लेक्चर के बाद एक भक्त ने श्री प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि हाँ, हम तो जरूर सुनते हैं ये सब चीजों के बारे में, लेकिन अगर दृढ़ता नहीं है पालन करने के लिए तो क्या करें? प्रभुपाद जी कहते हैं अगर दृढ़ता नहीं है तो व्यक्ति केवल पशु है, क्योंकि जो पशु होते हैं वो तो केवल अपनी प्रकृति के अनुसार वो चलते रहते हैं, बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। अगर बकरी के सामने घास डाला जाए तो बकरी कभी सोचता नहीं क्या सही समय है गलत समय, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो कभी सोचता नहीं, घास डाल दे मतलब खा लेता है। लेकिन मनुष्य का मतलब है बुद्धि, और बुद्धि का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए? कैसे भक्ति में आगे बढ़े, क्योंकि यह मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम सोचे इन चीजों के बारे में और कम से कम इच्छा करें, और ऑफ कोर्स इच्छा करने के बाद पूरी तरह से प्रयास करें। और हमें अगर हमें समझ में नहीं आता है कि प्रयास कैसे किया जाए तो फिर अन्य भक्तों से विचार विमर्श करें, गाइडेंस लें और उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम प्रयास करें। और ऑफ कोर्स उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हमारे खुद के प्रयास से तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो फिर हम गुरु और भगवान से प्रार्थना करें, उनकी कृपा की याचना करें, फिर संभव। तो फिर हम जो आदेश हम सुनते हैं उसको जीवन में उतारने के लिए शक्ति प्राप्त होगी। तो हम बार बार सुन रहे हैं लेकिन अगर जीवन में उतारने के लिए शक्ति नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमें भगवान से वो शक्ति प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि भगवान ही वो शक्ति दे सकते हैं, बलदेव। तो भलराम जी जो हैं वो शक्ति प्रदान करते हैं इन आदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए। उदाहरण के लिए मैं मंगलाती उठना चाहता हूं, मुझे पता है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उठने का समय जब आता है तो मन बहुत बहुत सारे कारण देता है, थके हुए हो, ठीक है एक दिन चलेगा, बहुत बहुत कुछ कारण होता है। तो उन जो बहाना है उन सबको छोड़कर आगे बढ़ने के लिए भगवान की शक्ति की जरूरत है, उनकी कृपा की जरूरत है। तो जब परीक्षा आती है तो उस समय तक हमने कितना प्रिपेयर किया है उसके ऊपर निर्भर रहता है कि क्या हम परीक्षा में पास होंगे या नहीं। सही बात है ना? तो अगर परीक्षा कल है और आज रात को हम बैठेंगे प्रिपरेशन करने के लिए, ये लोग हंस रहे क्योंकि भक्ति में वही करते हैं वो लोग। तो फिर पास होना मुश्किल है। ऑफकोर्स वो कर लेते हैं लेकिन जो बुद्धिमान है। लेकिन जो भगवान की परीक्षा है उतना आसान नहीं होता। उसके लिए पता नहीं एक जन्म लगेगा, कितना जन्मों का प्रिपरेशन लगेगा पता नहीं। तो जितना हद तक हमने प्रिपरेशन किया है तो फिर जब परीक्षा आती है तब पास होंगे। तो वो प्रिपरेशन क्या है, बाकी समय में हमने कितनी तीव्रता से हमने इस भक्ति का प्रोसेस को अपनाया है वो प्रिपरेशन है। और फिर परीक्षा के समय भगवान वो शक्ति देंगे वो पास होने के लिए। तो फिर तो वो प्रिपरेशन है, जैसे वही उदाहरण जो आपने बताया प्लेन का। तो अगर जब धरती पर होता है, अगर प्लेन का अच्छे से फ्यूलिंग हुआ है, पायलट ने अच्छे से ट्रेनिंग ली है, तो अगर अच्छे से प्रिपरेशन हुआ है तो फिर संभावना कम है कि प्लेन क्रैश होगा। लेकिन अगर प्रिपरेशन ही है ही नहीं, पायलट ने ठीक से ट्रेनिंग ही नहीं लिया है, फ्यूलिंग ही नहीं किया है, तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा है प्लेन क्रैश होगा। लेकिन हम देखते हैं सब होने के बावजूद भी क्रैश होता है, ऐसा नहीं क्रैश नहीं होता है। क्योंकि तो उसी प्रकार भक्तिमय जीवन में भी हम बहुत कुछ तैयारी कर सकते हैं लेकिन फिर भी अंततः पूरी तरह से हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। लेकिन हमारी ओर से प्रयास करना यह जरूरी है, जैसे कि यहां पर महाराज प्रतापरुद्र पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अंततः जब तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करने के लिए तैयार नहीं होते तब तक संभव नहीं है। ठीक है, ओके, विल टेक वन क्वेश्चन।
तो जी अगर ऐसी स्थिति है कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं है और मटेरियल वर्ल्ड में भी आगे बढ़ने इंटरेस्ट नहीं है, अगर ऐसा स्टेज है तो उसको कैसे पार किया जा सकता है, या ऐसा स्टेज होना संभव है या नहीं?
हाँ, संभव है, सब कुछ संभव है, क्या संभव नहीं है?
नहीं, अगर आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं आ रही तो भौतिक जीवन में आएगी ही आएगी, ऐसा है? या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ना हो?
दैट इज इंटरमीडिएट स्टेज। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी स्थिति वैसी ही है। एक ओर से भौतिक जीवन में रुचि नहीं है क्योंकि हमने सुना है, कुछ हद तक अनुभव भी किया है भौतिक जीवन का, कि वहां पर कुछ ज्यादा रस नहीं है वहां पर, तो इसलिए ज्यादा रुचि वहां पर नहीं है। और आध्यात्मिक जीवन में भी उतना रुचि नहीं, उतना प्रेम नहीं है। तो वैसे देखे तो हमारी सबकी स्थिति वैसी है, एटलीस्ट मेरी वैसी। तो अभी ये परिस्थिति कैसी है, जैसे कि अगर हम एक नदी में हैं और अगर हम बिल्कुल कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, या तो वी आर नॉट एंडेवरिंग टू आइदर स्विम इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और अगेंस्ट द करंट, वी आर नॉट मेकिंग एनी एंडेवर, अगर कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? स्वाभाविक रूप से नदी की प्रवाह में हम बह जाएंगे, ये स्वाभाविक है। तो उसी प्रकार हम कहां हैं, भवसागर, भवसागर में है, और इस भवसागर में फ्लो कहां है? इंद्रतुप्ति की ओर, नरक की ओर, ये फ्लो है। और आध्यात्मिक जीवन में हम उल्टा दिशा में हम तैरने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम उस दिशा में तैरने का प्रयास नहीं करेंगे और हम सोचेंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला है। अगर हम वो प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद, केवल समय की बात है, कुछ समय के बाद स्वाभाविक रूप से हम इस ओर, इंद्रतुप्ति की ओर बह जाएंगे। तो अगर हमें लग रहा है अभी हम ठीक स्थिति में है, यहां भी उतना नहीं, वहां भी उतना नहीं, ठीक चल रहा है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अगर उस आध्यात्मिक ओर की ओर अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इस ओर हम जाएंगे, केवल समय की बात है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग कभी क्लास से आते हैं, भक्ति विषय क्लास से, तो मैं रात को बहुत लेट हो जाती हूँ, और मेरा नियम है 1:30 बजे उठने का, तो और मेरी सुबह 4 बजे तक चैंटिंग पूरी हो चुकी होती है, और जिस दिन नहीं उठ पाती हूँ उस दिन मेरी चैंटिंग जो है वो 48 नहीं हो पाती, तो मैं सारा दिन ना खाना खा पाती हूँ ना बाकी काम कर पाती हूँ घर के, एक गिल्ट बना रहता है, बिटिया के साथ जाना होता है, प्रैक्टिस करानी होती है। हाँ जी,
प्रश्न क्या है आपका?
यही कि इसको कैसे सोल्यूशन, इसका क्या सोल्यूशन निकालू?
श्री प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि कम से कम 16 माला, 4 नियमों का पालन, और बाकी जो भी आदेश है, जो भी सेवा है, ये प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, ये मिनिमम है। तो अच्छी बात है कि आप, आपकी इच्छा है ज्यादा जप करने की, लेकिन हमें प्रैक्टिकली देखना होगा कि हमारे लिए कितना संभव है। तो श्रील प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं कि हम हरिदास ठाकुर का नकल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए क्या संभव है वो देखना चाहिए। और इसलिए बहुत जरूरी है कि भक्तिमय जीवन में हम वरिष्ठ वैष्णव के मार्गदर्शन के अनुसार चलें, ठीक है, कुछ मनमाने ढंग से नहीं। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप किसी वरिष्ठ वैष्णव से सलाह लें।
क्लास में तो जाती हूँ मैं।
हाँ ठीक है, तो आप पर्सनली उनसे बात कर सकते हैं और फिर उनके सलाह के अनुसार, उनके उनके निर्देशन के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण।